एकत्र ज्ञानोगोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानोगोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञानोगोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका पहला मेजबान।
और मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, ऐसी किताब जो एक काफी कह सकते हैं जटिल विषय को समझने में मदद करती है।
बिल्कुल, ये है लूक टिमोथी जॉनसन की द न्यू टेस्टमेंट, ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
जी, न्यू टेस्टमेंट मतलब नया नियम, दुनिया के सबसे प्रभावशाली, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथों में से एक।
और बहस भी खूब होती है इस पर।
हाँ बिल्कुल, लेकिन इसे समझना आसान नहीं है, खासकर आज के दौर में जब जानकारी तो बहुत है पर शायद गहराई उतनी नहीं।
सही कहा। तो ये किताब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो इसे बस ऊपरी तौर पर नहीं जानना चाहते, बल्कि इसकी गहराइयों में, इसकी दुनिया में उतरना चाहते हैं।
एक अच्छा शुरुआती बिंदु है ना? बिल्कुल। और जॉनसन का जो नजरिया है वो इसे खास बनाता है। वो हमें इसे सिर्फ कोई पवित्र किताब या इतिहास के दस्तावेज की तरह देखने से आगे ले जाते हैं।
अच्छा, किस तरह से?
वो दिखाते हैं कि ये ग्रंथ असल में शुरुआती ईसाई समुदायों के जो अनुभव थे, उनके संघर्ष, उनकी आस्था, उनसे उपजे हैं।
मतलब ये सिर्फ नियम कानून या इतिहास नहीं है?
नहीं, ये एक जीवंत चलते फिरते आंदोलन की साहित्यिक गूंज है एक तरह से।
चलिए लेखक पर भी थोड़ी बात कर लें। ल्यूक टिमोथी जॉनसन।
हाँ, इनका बैकग्राउंड काफी दिलचस्प है। ये कोई आम प्रोफेसर नहीं है।
अच्छा, एमोरी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तो रहे हैं न्यू टेस्टमेंट और क्रिश्चियन ओरिजिन्स के।
जी हाँ, वो तो है ही, जाने माने विद्वान हैं। लेकिन जो बात उन्हें अलग घड़ती है वो है उनका अकेडमिक ज्ञान और साथ में व्यवहारिक अनुभव का संगम।
आप उनके बेनेडिक्टन भिक्षु और पादरी होने की बात कर रही हैं?
हाँ बिल्कुल, इससे उन्हें इन ग्रंथों की एक अंदरूनी, एक जीती जागती समझ मिली। उन्होंने सिर्फ इनका अध्ययन नहीं किया, इन्हें जिया है।
मतलब उन्होंने देखा है कि ये कैसे प्रार्थना में, पूजा में, लोगों की रोजमर्रा की आध्यात्मिक जिंदगी में काम करते हैं।
एग्जैक्टली, और यही बात उनके नजरिए को एक खास गहराई देती है। वो उन विद्वानों से पूरी तरह सहमत नहीं है जो सिर्फ ऐतिहासिक इशू को खोजने के चक्कर में विश्वास वाले पहलू को बिल्कुल अलग कर देते हैं।
हाँ, मैंने पढ़ा है कि वो इसके आलोचक रहे हैं।
जी, जॉनसन मानते हैं कि ऐसा करना इन ग्रंथों की प्रकृति को ही गलत समझना है। ये ग्रंथ लिखे ही इसलिए गए थे क्योंकि लोगों को ईशु के जी उठने पर, पुनरुत्थान पर गहरा विश्वास था। वो विश्वास ही इनका आधार है।
तो फिर ये किताब करती क्या है, इसका मकसद क्या है?
इसे आप ऐसे समझें कि ये न्यू टेस्टमेंट की दुनिया का एक गाइडेड टूर है।
अच्छा।
जॉनसन हमें एक पनों से न्योता देते हैं कि हम अपनी जो पहले से बनी धारणाएं हैं, चाहे वो पक्की आस्था वाली हो या फिर शक वाली, उन्हें जरा साइड में रखकर इन पुराने लेखों को वैसे देखें जैसे वो असल में है।
और वो कैसे हैं असल में?
विविध हैं, जीवंत हैं, और हाँ कभी कभी उनमें विरोधाभास भी दिखता है।
तो उनका मुख्य तर्क क्या है?
उनका मुख्य तर्क ये है कि न्यू टेस्टमेंट को अगर समझना है तो इसकी चाबी उन पहली सदी के समुदायों के अनुभवों में छुपी है जिन्होंने इन्हें लिखा और इस्तेमाल किया।
अच्छा, मतलब ये हवा में नहीं लिखे गए?
बिल्कुल नहीं, ये चिट्ठियां थीं, कहानियां थीं, दर्शन थे, ये सब खास जरूरतें पूरी करने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए लिखे गए थे। रोमन साम्राज्य में जो छोटे छोटे ईसाई समूह फैले थे, उनकी पहचान बनाने, उनकी नैतिकता को आकार देने के लिए।
तो इनका एक रोल था, एक फंक्शन था उन कम्युनिटीज में।
यूं पर बात करती हैं गॉस्पेल, एपिसिल, एपोकैलिप्स,
जॉनरा जिसे कहते हैं।
हाँ, जॉनरा। जॉनसन समझाते हैं कि हर जॉनर का अपना एक अलग मकसद होता है, उसे पढ़ने का तरीका भी अलग होता है।
और वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या ये सच में हुआ था।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वो कहते हैं कि इससे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि इसे क्यों लिखा गया, किसके लिए लिखा गया, लिखने वाले का असल मकसद क्या था। फिर वो यीशु और पॉल जैसे जो मुख्य किरदार हैं, उन्हें देखते हैं कि ग्रंथ उन्हें कैसे दिखाते हैं और कैसे उनके विचारों ने एक नए, काफी विविध किस्म के धार्मिक आंदोलन को जन्म दिया।
और आखिर में वो कैनन वाली बात भी करते हैं कि यही 27 किताबें क्यों।
जी हाँ, कैननाइजेशन की प्रक्रिया, कि कैसे और क्यों इन्हीं किताबों को चुना गया।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, किताब के अलग अलग हिस्सों को देखते हैं। पहली बात जो जॉनसन कहते हैं वो बहुत बुनियादी लेकिन अहम है।
कौन सी?
कि न्यू टेस्टमेंट कोई एक किताब नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है। 27 अलग अलग दस्तावेज।
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, अलग लेखक, अलग समय, अलग हालात।
बिल्कुल, और यहीं से वो सवाल आता है कि इसे पढ़ें कैसे, इतिहास की तरह या धर्म की तरह।
जॉनसन का जोर इस बात पर है कि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो हमेशा से धार्मिक रहा है। इन लेखों का काम था विश्वास जगाना, समुदायों को गाइड करना, उन्हें साथ लाना।
ऐतिहासिक जानकारी अगर मिल जाए तो वो एक तरह से बाय प्रोडक्ट है।
हाँ, कह सकते हैं वो मूल लक्ष्य नहीं था।
और यहीं पर वो कैनन और स्क्रिप्चर जैसे शब्द आते हैं ना?
जी, ये शब्द दिखाते हैं कि वक्त के साथ कुछ लेखों को खास दर्जा मिला। क्यों? क्योंकि वो समुदायों के काम आए, उनके विश्वास को मजबूत करने में मदद की।
तो जॉनसन हमें उकसाते हैं कि हम पूछें लिखने वाले का इरादा क्या था, पढ़ने वाले पहले समुदाय कौन थे, उनकी जरूरतें क्या थीं।
बिल्कुल, और इस लाइब्रेरी को समझने के लिए उस दुनिया को समझना पड़ेगा जहां ये लिखी गई, पहली सदी का भूमध्य सागरीय क्षेत्र।
हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट।
जॉनसन दो मुख्य संदर्भों पर ध्यान दिलाते हैं। पहला है यहूदी संदर्भ,
उस वक्त का यहूदी धर्म।
हाँ, जो कि काफी विविध था। एक ईश्वर वाचा तोरा पर जोर तो था, लेकिन फारीसी, सदूकी, एसेनी जैसे कई समूह थे जिनकी सोच अलग अलग थी। यीशु और शुरुआती चर्च की जड़ें इसी यहूदी माहौल में थीं।
और दूसरा संदर्भ
वो है ग्रीको रोमन संदर्भ। रोमन साम्राज्य का दबदबा, उनकी बनी हुई सड़कें जिनसे आना जाना आसान हुआ।
हाँ, और आम यूनानी भाषा,
कोइन, जिसने बातचीत को आसान बनाया।
बिल्कुल,
और यूनानी दर्शन भी। इन सब ने ईसाई धर्म के फैलने और उसके रूप लेने में अपनी भूमिका निभाई। पॉल जैसे मिशनरी इन्हीं सड़कों पर चले, कोरिंथ जैसे शहरों में चर्च बनाए, और वहां उन्हें यूनानी सोच और रोमन राज की चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
तो ईसाई धर्म एक तरह से इन दो दुनियाओं के चौराहे पर पैदा हुआ।
सही कहा।
इसके बाद आते हैं गॉस्पेल, यानी सुसमाचार, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन।
और जॉनसन इनके बारे में क्या कहते हैं?
वो बहुत साफ कहते हैं, इन्हें आज के जमाने की बायोग्राफी समझने की भूल मत कीजिए।
अच्छा,
क्यों नहीं?
क्योंकि ये उससे कहीं ज्यादा है। इन्हें आप धार्मिक चित्र या व्याख्यात्मक कथाएं कह सकते हैं।
मतलब
ये कि हर लेखक, हर इंजीलीवादी यीशु से जुड़ी जो परंपराएं थीं उनमें से चुनता है, उन्हें अपने खास अंदाज में ढालता है ताकि वो एक विशेष धार्मिक संदेश दे सके।
उनका लक्ष्य सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ?
नहीं, बल्कि ये बताना कि जो हुआ उसका अर्थ क्या है, उसकी अहमियत क्या है।
दिलचस्प है।
बिल्कुल, जैसे मार्क है, जो शायद सबसे पुराना गॉस्पेल है, वो यीशु को एक रहस्यमयी, दुख उठाने वाले मसीहा के तौर पर दिखाता है। काफी नाटकीय अंदाज है।
और मैथ्यू?
मैथ्यू शायद यहूदी पाठकों के लिए लिख रहा था, तो वो यीशु को एक नए मूसा की तरह, एक महान टीचर के रूप में पेश करता है।
और ल्यूक? उन्होंने तो प्रेरितों के काम भी लिखा।
हाँ, ल्यूक यीशु को पूरी दुनिया का उद्धार करता दिखाते हैं। उनका खास ध्यान गरीबों पर, महिलाओं पर, हाशिए पर पड़े लोगों पर रहता है।
और जॉन तो बिल्कुल अलग है।
हाँ, जॉन सबसे अलग है। वो यीशु को स्वर्ग से उतरे दिव्य लोगोस, यानी वचन या शब्द के रूप में दिखाता है। उसकी भाषा बहुत प्रतीकात्मक, बहुत गहरी है।
तो ये जो अंतर है गॉस्पेल में,
जॉनसन कहते हैं कि ये कमजोरी नहीं बल्कि अमीरी है। ये यीशु के महत्व पर चार अलग अलग लेकिन शक्तिशाली नजरिए हैं।
फिर बात आती है प्रेरित पॉल की। न्यू टेस्टामेंट में सबसे पुराने लेख तो उन्हीं के पत्र हैं।
हाँ बिल्कुल, पॉल शुरुआती ईसाई धर्म में एक बहुत बड़ी हस्ती थे। मिशनरी थे, चर्च बनाए उन्होंने, और वो एक अहम धर्मशास्त्री भी थे। उन्होंने यीशु की मौत और पुनरुत्थान का क्या मतलब है इसे समझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
जॉनसन उनके पत्रों को आकस्मिक कहते हैं, इसका क्या मतलब है?
आकस्मिक या कंटिंजेंट, इसका मतलब है कि ये पत्र किसी खास मौके पर किसी खास समुदाय की असली समस्याओं या सवालों के जवाब में लिखे गए थे। ये हवा में नहीं लिखे गए।
अच्छा, जैसे?
जैसे कोरिंथ का चर्च था, वहाँ फूट पड़ गई थी, लोग बट गए थे, या गलातिया के चर्च में ये बहस छिड़ गई थी कि भाई गैर यहूदियों को ईसाई बनने के लिए क्या यहूदी रीति रिवाज मानने पड़ेंगे। तो पॉल के पत्र इन असली तात्कालिक हालात में दखल देते हैं। उनका एक व्यवहारिक उद्देश्य था।
और उनके मुख्य विचार क्या थे?
उनके मुख्य विचारों में शामिल है विश्वास के जरिए ईश्वर की नज़र में सही ठहराया जाना, जिसे जस्टिफिकेशन बाय फेथ कहते हैं, क्रॉस का केंद्रीय महत्व, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में जीना और चर्च का मसीह का शरीर होना। ये कुछ मुख्य बातें हैं।
पॉल के बाद क्या हुआ? आंदोलन तो बढ़ता रहा होगा ना?
हाँ बिल्कुल, नई पीढ़ियाँ आईं, नई चुनौतियाँ पैदा हुईं और न्यू टेस्टमेंट की जो बाकी किताबें हैं वो इसी दौर की झलक देती हैं।
जैसे प्रेरितों के काम,
एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। हाँ, एक्ट्स जो ल्यूक के गॉस्पल का दूसरा भाग है, वो दिखाता है कि कैसे ईसाई संदेश यरूशलेम से शुरू होकर दुनिया के कोने कोने तक फैला। ये एक तरह का कह सकते हैं आदर्श इतिहास है। इसका मकसद था शुरुआती चर्च की कामयाबी और पवित्र आत्मा की शक्ति को दिखाना।
और बाकी पत्र भी हैं, इफिसियों, कुलुसियों।
जी, और तीमोथियुस और तीतुस को लिखे गए पत्र, जिन्हें पास्टोरल पत्र भी कहते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि ये शायद पॉल के अनुयायियों ने उनके नाम से लिखे।
अच्छा, क्यों?
क्योंकि इनमें पॉल के विचारों को नई सिचुएशंस में लागू किया गया है। इनमें चर्च को ज्यादा व्यवस्थित करने, लीडरशिप जैसे बिशप डीकन तय करने और जो गलत शिक्षाएं थी उनका सामना करने पर ज्यादा जोर दिखता है।
मतलब आंदोलन को एक संस्था का रूप देने की कोशिश।
हाँ, एक तरह से। फिर कुछ आम या कैथोलिक पत्र भी हैं, जैसे याकूब, पत्रस या यहूदा के पत्र।
ये किसी एक चर्च के लिए नहीं थे?
नहीं, ये ज्यादातर सभी ईसाइयों के लिए थे। और इनमें भी आपको अलग अलग बातें नजर आएंगी। जैसे याकूब का पत्र है, वो कर्मों पर और सामाजिक न्याय पर बहुत जोर देता है,
जो पॉल की सिर्फ विश्वास वाली बात से थोड़ा अलग लगता है।
हाँ, एक जरूरी संतुलन पेश करता है कह सकते हैं।
और आखिर में वो सबसे रहस्यमयी किताब, प्रकाशित वाक्य,
रेवलेशन। हाँ, और जॉनसन इसके बारे में बहुत जोर देकर कहते हैं कि भाई इसे भविष्य की घटनाओं का कोई सीक्रेट कोड समझने की गलती मत करना।
तो फिर ये है क्या? लोग तो अक्सर इसे दुनिया के अंत की भविष्यवाणी मानते हैं।
जॉनसन बताते हैं कि ये एपोकैलिप्टिक साहित्य का एक क्लासिक उदाहरण है। ये एक खास तरह की लेखन शैली थी जो उस जमाने में यहूदी और ईसाई समूहों में काफी पॉपुलर थी।
एपोकैलिप्टिक।
हाँ, इसमें बहुत ज्यादा नाटकीय सिंबॉलिक भाषा का इस्तेमाल होता है, जैसे अजीब जानवर, संख्याएं, भयानक आपदाएं, और इसका मकसद होता है दुनिया की असलियत और ईश्वर के अंतिम न्याय को प्रकट करना,
रिवील करना।
तो इसका असली मकसद क्या था?
ये किताब उन ईसाई समुदायों के लिए लिखी गई थी जो रोमन साम्राज्य के हाथों जुल्म सह रहे थे। ये भविष्य बताने वाली कोई क्रिस्टल बॉल नहीं थी, बल्कि ये धार्मिक प्रतिरोध का एक शक्तिशाली दस्तावेज था।
प्रतिरोध कैसे?
इसका मकसद था उन सताए हुए लोगों को हिम्मत देना, उन्हें यकीन दिलाना कि देखो, भले ही अभी रोम का सम्राट दुनिया का मालिक लगता हो, पर आखिर में जीत ईश्वर की ही होगी। ये रोम की ताकत को शैतानी बताकर उसकी आलोचना करती है।
एक आखिरी सवाल इस सेक्शन में, ये 27 किताबें ही क्यों चुनी गई? और भी तो लेख थे शुरुआती ईसाइयों के।
हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। जॉनसन बताते हैं कि ये फैसला कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये सदियों तक चली एक धीमी प्रक्रिया थी जिसे कैनन का गठन कहते हैं।
कैनन मतलब आधिकारिक लिस्ट। जी, तो इसके लिए कुछ कसौटियां थीं, हालांकि वो बहुत औपचारिक नहीं थी शुरू में। जैसे, क्या ये किताब किसी प्रेरित, यीशु के सीधे शिष्य या उसके साथी से जुड़ी है? इसे कहते हैं प्रेरितता, अपोस्टलिसिटी।
अच्छा, और
दूसरी, क्या इसे ज्यादातर चर्च मानते थे और अपनी प्रार्थना सभाओं में इस्तेमाल करते थे, यानी कैथोलिसिटी या सार्वभौमिकता? और तीसरा, क्या इसकी शिक्षा चर्च के जो मूल विश्वास थे उनसे मेल खाते थी, यानी रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्सी?
तो जिन किताबों ने इन पैमानों को पूरा किया,
हाँ, उन्हें धीरे धीरे ज्यादा आधिकारिक माना जाने लगा। तो कैनन बनना एक ऐतिहासिक प्रक्रिया भी थी और एक धार्मिक चुनाव भी। ये वो लेख थे जो समुदायों को आध्यात्मिक रूप से सबसे ज्यादा पोषण देते महसूस हुए।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या निकलती हैं?
पहली और मेरे ख्याल से सबसे जरूरी बात, न्यू टेस्टमेंट एक आवाज नहीं, अनेक आवाजों का संगम है।
हाँ, ये कोई मोनोलिथ नहीं है।
बिल्कुल, मार्क का इशू जॉन के इशू से अलग महसूस होता है, पॉल की बातें याकूब के उपदेशों से अलग है, और ये विविधता कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ये उस शुरुआती आंदोलन की सच्चाई दिखाती है।
दूसरी बात क्या होगी?
दूसरी बात, ये ग्रंथ हवा हवाई सिद्धांत नहीं है, बल्कि जिंदगी के ठोस अनुभवों और जरूरतों की उपज है, जिसे हमने आकस्मिकता कहा था।
हाँ, कि पॉल ने कोरिंथ को इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ असली दिक्कतें थी।
एग्जैक्टली, गॉस्पल इसलिए लिखे गए ताकि लोगों को यीशु के बारे में बताया जा सके, समझाया जा सके। इन सबका एक प्रैक्टिकल उद्देश्य था।
तीसरा पॉइंट,
तीसरा, पुनरुत्थान का विश्वास। ये वो चश्मा है जिससे पूरा न्यू टेस्टमेंट देखा गया और लिखा गया। ये सब कुछ यीशु के मरने के बाद इस विश्वास के साथ लिखा गया कि वो जी उठे थे।
इसलिए गॉस्पल किसी मरे हुए गुरु की यादें नहीं है?
नहीं, वो एक जीवित प्रभु की घोषणाएं हैं,
प्रोक्लेमेशंस हैं।
चौथा पॉइंट, चौथा, गॉस्पल आधुनिक जीवनियां नहीं, धार्मिक चित्र हैं। उनका लक्ष्य फोटो खींचना नहीं था, पोर्ट्रेट बनाना था। एक ऐसा चित्र जो उनके हिसाब से यीशु की सच्ची पहचान और महत्व को दिखाता हो, इसलिए उनमें अंतर होना लाजमी है और वो ठीक है।
और पांचवा,
पांचवा, शुरुआती ईसाइयत में एकता का मतलब एक रूपता नहीं था। वहां बहसें थीं, मतभेद थे, जैसे पॉल और यरूशलेम के नेताओं के बीच गैर यहूदियों को लेकर। उनकी एकता किसी एक नियम या रीति रिवाज को मानने में नहीं थी, बल्कि इस मूल विश्वास में थी कि यीशु ही प्रभु है।
जॉनसन की कुछ बातें ऐसी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, कुछ कोट्स जैसे।
बिल्कुल, जैसे उनका ये कहना कि न्यू टेस्टमेंट को एक किताब नहीं बल्कि एक गतिशील और विविध धार्मिक आंदोलन के साहित्यिक अवशेष के रूप में सबसे अच्छा समझा जाता है।
साहित्यिक अवशेष, ये शब्द बहुत कुछ कहता है।
हाँ, कि ये उस बड़े जीवंत अनुभव का सिर्फ एक बचावा हिस्सा है जो हम तक पहुंचा है। पूरी कहानी शायद और भी बड़ी थी।
और गॉस्पेल के बारे में वो बात,
हाँ, कि वे विश्वास से भरे चित्र हैं। प्रत्येक ईशु को एक विशिष्ट धार्मिक रंग पटल से चित्रित करता है ताकि अपने समुदाय को मना सके और आकार दे सके।
इससे हमें उन्हें अलग अलग सराहने में मदद मिलती है, बजाय इसके कि हम उनमें कमियां या विरोधाभास ढूंढते रहें।
बिल्कुल, हर एक का अपना रंग है, अपना फोकस है।
और प्रकाशित वाक्य के बारे में उनकी चेतावनी बहुत जरूरी लगती है आज के समय में।
हाँ, कि इसे भविष्य की घटनाओं के लिए एक भविष्यवाणी कोट के रूप में पढ़ना उसकी शैली और उद्देश्य की मौलिक रूप से गलत व्याख्या करना है। ये सताए हुओं को आशा देने के लिए लिखा गया था।
ये हमें उन लोकप्रिय लेकिन अक्सर भ्रामक व्याख्याओं से बचाता है जो टीवी पर या इंटरनेट पर दिखती हैं।
सही कहा, शैली को समझना बहुत जरूरी है।
तो इन सब बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे काम आ सकती हैं?
देखिए, पहली बात तो ये कि ये हमें किसी भी पुराने पाठ को, चाहे वो धार्मिक हो या ना हो, पढ़ने का एक बेहतर, ज्यादा समझदारी वाला तरीका सिखाता है।
कैसे?
तट डालना, किसने लिखा, क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, उस समय के हालात क्या थे, ये किस शैली में लिखा गया है।
मतलब आंख मूंद कर मान लेने या सीधे खारिज कर देने से बेहतर है कि हम थोड़ा सोच समझ कर पढ़ें।
बिल्कुल, एक ज्यादा सूक्ष्म जुड़ाव। दूसरी बात, इससे शायद धार्मिक मामलों में थोड़ी विनम्रता आ सकती है।
वो कैसे?
जब हम देखते हैं कि भाई शुरुआत में ही इतनी विविधता थी, इतने मतभेद थे, तो ये जो दावा होता है ना कि सिर्फ मेरा रास्ता ही सही है, उस पर थोड़ा सवाल उठता है।
हाँ, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ इतने सारे धर्म और मत हैं, ये समझना जरूरी है कि एकता का मतलब हमेशा एक जैसा होना नहीं होता।
बिल्कुल। तीसरा, ये दिखाता है कि आस्था और तर्क या विश्वास और बुद्धि जरूरी नहीं कि दुश्मन हो।
हाँ, जॉनसन खुद एक विद्वान भी है और आस्थावान भी।
हाँ, उनका काम दिखाता है कि एक आलोचनात्मक ऐतिहासिक नजरिए से भी इन ग्रंथों को पढ़ा जा सकता है, और इससे विश्वास कमजोर होने के बजाय शायद और मजबूत हो, क्योंकि वो ज्यादा गहरी समझ पर आधारित होगा।
और कोई बात?
और आखिर में, यह हमें कहानी की, नैरेटिव की ताकत का एहसास कराता है।
गॉस्पेल की तरह?
हाँ, गॉस्पेल ने सिर्फ जानकारी नहीं दी, उन्होंने एक ऐसी कहानी बुनी जिसने लाखों लोगों के जीवन को मतलब दिया, समुदायों को जोड़ा। हम सब उन कहानियों से बनते हैं जो हम सुनते हैं, सुनाते हैं और जिन पर यकीन करते हैं। ये बात आज भी उतनी ही सच है।
मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये रही कि न्यू टेस्टमेंट को एक अकेली किताब की तरह नहीं बल्कि एक लाइब्रेरी की तरह देखना, ये पूरा नजरिया ही बदल देता है।
हाँ, और ये उसकी अंदरूनी विविधता को स्वीकार करना आसान बनाता है। ये समझना कि अलग अलग लेखकों के अपने खास इरादे थे, अपने पाठक थे।
और मेरे लिए ये समझना जरूरी था कि इन ग्रंथों को समझने के लिए एक खुला दिमाग और एक खुला दिल दोनों चाहिए।
हाँ, मतलब ऐतिहासिक जटिलताओं को ईमानदारी से देखना
और साथ ही उस गहरे विश्वास को महसूस करने की कोशिश करना जिसने इन पन्नों को जिंदा रखा है। हमें ये भी समझना होगा कि ये लिखे क्यों गए थे।
बिल्कुल, जॉनसन की ये किताब दिखाती है कि कैसे हम इन महत्वपूर्ण ग्रंथों से गंभीरता और सम्मान के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे हमारी अपनी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी क्यों ना हो।
तो चलते चलते एक सवाल है जो शायद श्रोताओं के मन में भी आए।
पूछिए।
अगर इन ग्रंथों को लिखने और चुनने में इतनी मानवीय प्रक्रिया शामिल थी, इतने सारे लोगों के इरादे, इतने ऐतिहासिक संयोग, तो फिर आज के पाठक के लिए ईश्वरीय प्रेरणा या दैवीय प्रेरणा का क्या मतलब रह जाता है?
ये वाकई एक गहरा सवाल है और शायद इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम सब अपने अपने नजरिए से सोच सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।